તારીખ 19/11/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 275 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 220
સંખ્યા 161 પૂજા પાઠ કે સંબંધ મેં પ્રશ્ન કિયા હૈ કે ક્યા ભગવાન કે પૂજા પાઠ કરને સે સંસાર કા રસ કમ હો જાતા હૈ ક્યા સંસાર કા રસ મેને સંસારિક ભાવો જો હોતે હૈ ઉસમે રસ આતા હૈ ખાસ કરકે જો ભી સંયોગ હૈ ઉસ સંયોગ મે સુખ બુદ્ધિ હૈ આધાર બુદ્ધિ હૈ और अपनत्व की बुद्धि है, ऐसे परिणामों में रस आता है। तो भगवान की पूजा पाठ करने से उस प्रकार का रस कम होवे या नहीं होवे, ऐसा प्रश्न किया है। बेंसरी के पास कई प्रकार की चर्चाएं चली है, तो सब प्रश्न निकले हैं। अब भगवान की भक्ति पूजा पाठ एक ढंग से नहीं होती, जैसे जिसकी योग्यता, पूजा पाठ करने वाले की जैसे जैसे योग्यता। सामान्य तौर से संप्रदाय में जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन लोगों का संसार रस घटता नहीं। क्यों? कि एक रूटीन बना लेते हैं कि रोज भगवान की पूजा पाठ कर लेना है, या अमुक दिन में भगवान की पूजा पाठ करना है, ऐसा कोई रूटीन बना लेता है। तो उस तरह से कोई भोग संज्ञा से भगवान का स्वरूप समझे बिना, यानी भगवान ने कैसे कैसे आत्मगुण प्रकट किए हैं वो समझे बिना, और अपने आत्मा को ऐसी भावना में आए बिना कि मेरे को भी ऐसा बनना है, संसार का रस नहीं घटता। और जिसको ऐसी भावना होती है तो खास करके जो अपने दिगंबर संप्रदाय में पूजा है, उस पूजा में उस प्रकार की योजना है कि जिसमें अध्यात्म तत्व भी रखा गया है, तो उस अध्यात्म भाव में आने से, आत्म भाव में आने से अनात्म भाव में ने संसार के रस कम होता है। तो एकांत बात नहीं है कि घटता भी नहीं, और एकांत बात नहीं है कि घटता भी है। प्राय बहुभाग लोगों को नहीं घटता है, और कुछ एक लोगों को घटता भी है, दोनों बात बनती है। देखो उत्तर क्या देती है बेन सिंह, ऐसा नहीं है। क्या? पहले तो जवाब वो दे दिया कि पूजा पाठ करने से संसार का रस कम होता है, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा जवाब दिया? उत्तर ऐसा क्यों दिया कि प्राय लोग शुभ भाव कर लेते हैं, और संसार के संयोग की अपेक्षा रखने वाले तो उस शुभ भाव का फल भी चाहते हैं। चलो भगवान की पूजा अपन करते हैं तो पुण्य बंध होएगा और पुण्य का फल मिलेगा, और अपने संसार की लीली बाड़ी बनी रहेगी, सुखेगी नहीं। जबकि मोक्ष में जाने वाले तो संसार से छूटकर मोक्ष में जाते हैं। तो जिसको संसार से छूटना है उसको तो संसार की लीली बड़ी रखने का सवाल नहीं होता। और संसार की भावना से कोई संसार की लीली बड़ी रहती है सो भी बात नहीं है, क्योंकि ये तो प्रारब्ध अनुसार चलता है। संसार के प्रसंग, संयोग वियोग, इष्ट संयोग अनिष्ट वियोग, या इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, सब प्रकार जो है, चारों प्रकार है, वो तो प्रारब्ध अनुसार ही बनता है। उसमें इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र किसी की चलती नहीं है। जीव ने जो कर्म बांधा है वो अवश्य भोगना है। अगर ऐसा नहीं हो तो कोई व्यवस्था नहीं रहती, कुदरत की कोई व्यवस्था नहीं रहती। इसलिए जो पूजा पाठ करते हैं और केवल शुभ भाव करते हैं, जिसमें आत्म कल्याण की भावना नहीं हो, संसार के सुखों की भावना हो, उनको तो संसार का रस नहीं घटता, क्योंकि उसको तो संसार के सुख की भावना है, तो संसार रस कहाँ से घटेगा? घटेगा तो नहीं, पूजा पाठ करते करते बढ़ेगा। घटेगा तो नहीं किंतु पूजा पाठ करते करते बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसा उत्तर दिया है, क्योंकि प्रायः ऐसा बनता है, बहुभाग लोगों को ऐसा ही बनता है। अब दूसरी भी बात करते हैं कि अंतर में भगवान जिनेंद्र देव की महिमा आवे कि कैसे वितराग है। भगवान ने वितरागता प्रकट की, ऐसी वितरागता मेरे में शक्ति रूप से है, मेरे में भी है किंतु शक्ति रूप से है, पावर के रूप में है, व्यक्त प्रकट रूप में नहीं है। ऐसे अपने स्वरूप को भी अनुसंधान करे, जो मूल स्वरूप है आत्मा का, वो तो परमात्मा स्वरूप है सबों का, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ख्रिस्ती हो, कोई भी जीव हो, सभी की आत्मा भीतर में परमात्मा स्वरूप है। भगवान ने साधना करके वो परमात्मा दशा प्रकट की है, संसारी जीवों को प्रकट नहीं है। अवस्था भेद है, अवस्था माने पर्याय भेद है, मूल स्वरूप में कोई भेद नहीं है। सर्वात्मा समदृष्टि लो, सर्वात्मा समदृष्टि, समदृष्टि मैंने एक सी दृष्टि दो। भगवान ने वितरागता प्रकट की, ऐसी वितरागता मेरे में भी है, ऐसे वितरागता की महिमा आए, स्व पर दोनों की, भगवान की और अपने स्वरूप की भी महिमा आए, और उसका रस लगे, आत्मरस लगे, वितराग रस लगे, तो संसार का राग रस कम हो जाए। सिद्धांत क्या हुई वाह, कि संसार का रस है वो राग रस है, और आत्मरस है वो वितराग रस है, दोनों आमने सामने हैं, प्रतिपक्ष में है, अपोजिट है। तो जिसको संसार का रस है उसको आत्मरस नहीं आएगा, क्योंकि रस के साथ रुचि काम करती है। तो जिसको संसार की रुचि है उसको मोक्ष की रुचि, आत्मा की रुचि, आत्मरस, आत्मरुचि नहीं है। और जिसको वितरागता भगवान को देख करके, भगवान ने जो वितरागता प्रकट की, ऐसी आत्मा में है ऐसे आत्म भावना और आत्म रुचि और वितराग रस की भावना और रुचि का पुष्टि करना है, उसका पोषण करना है, उसको संसार का राग रस है वो कम हो जाएगा। क्यों? कि विरुद्ध रस एक दूसरे को मारता है। क्या होता है? विरुद्ध रस एक दूसरे को मारता है। जैसे एक ही व्यक्ति पे राग होता है, जब द्वेष होता है तो राग मिट जाता है, राग रस छूट जाता है, होता है कि नहीं? वही व्यक्ति पे द्वेष भी आता है कि नहीं? और किसी व्यक्ति पे द्वेष किया, फिर कोई संबंध अच्छे बन गए तो राग करने लगे तो द्वेष रस छूट जाता है, क्योंकि राग और द्वेष परस्पर विरुद्ध है। ऐसे राग और वीतरागता दोनों परस्पर विरुद्ध है, संसार और मोक्ष दोनों परस्पर विरुद्ध है, एक एक दिशा में नहीं है, विरुद्ध दिशा में है। इसलिए जो भगवान की पूजा पाठ करता है और उसमें भगवान का जो वितराग रस, आत्मरस और अपना आत्मरस, वो दोनों का साथ साथ प्रयोजन का योजना नहीं करते हैं, प्रयोजन की योजना नहीं करते हैं, उनको तो संसार रस नहीं घटता। वो तो जाने अनजाने भी भगवान के साथ सौदाबाजी करेगा, ये भगवान मैं तेरी भक्ति करता हूँ, तुझे भजता हूँ, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, तो तुम्हारी कृपा से भले ही मिले लेकिन हमको कुछ मिलना चाहिए, तो लेने देने की बात हो गई, निस्वार्थ बात नहीं रही, निष्काम बात नहीं रही। शास्त्रों में भक्ति को बखानी है जरूर, लेकिन जो निष्काम भक्ति है उसको बखानी है। सकाम कामना वाली जो भक्ति है उसका निषेध किया है। क्या किया है? उसका निषेध कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें अपना संसार रस की पुष्टि होती है और संसार के जीव प्रायः ऐसा ही करते हैं, इसलिए पहले उत्तर वो दे दिया कि ऐसा नहीं है, पूजा पाठ करने से संसार का रस कम होता नहीं है। परंतु बात ऐसी है भी, मैंने दूसरी बात कोई ऐसी भी है कि कुछ लोगों को फायदा भी होता है, आत्मरस प्रकट होता है, संसार रस कम होता है। और जो ज्ञानी कवि हुए हैं, जो आचार्य कवि हैं, उन्होंने तो भक्ति के पूजा पाठ लिखे हैं, स्तोत्र लिखे हैं, पद्मनंदी आचार्य ने स्तोत्र लिखे और भक्तांबर मानतुंगाचार्य ने लिखा, समन भद्राचार्य ने भी भगवान की स्तुति की है, कल्याण मंदिर स्तोत्र, ऐसे कई स्तोत्र भी लिखे हैं आचार्यों ने, महामुनि हैं फिर भी लिखे। तो क्या है कि उनके ज्ञान में भगवान का स्वरूप बराबर होता है, साथ साथ वो अपने आत्मस्वरूप की भावना भी भाते रहते हैं, भगवान का बहुमान के साथ आत्म भावना भी उसकी बढ़ती रहती है, आत्मरस का उसका घोलन होने से आत्मभाव आविर्भूत होते हैं। ऐसे लोगों को, ज्ञानियों को और उच्च कोटि के मुमुक्षुओं को और मुनियों को पूजा करते करते ही आत्मभाव आविर्भूत होते हैं, केवल शुभ भाव उनको नहीं होते, अकेले शुभ भाव नहीं होते, शुभ भाव के साथ साथ आत्मभाव भी उनको होते रहते हैं। तो पूजा के माध्यम से, पूजा के दौरान जो आत्मभाव होते हैं इसलिए वो पूजा के बहाने अपने आत्मभाव को आविर्भाव भी करते हैं। ऐसे शास्त्र स्वाध्याय भी है, ऐसे टीका वगैरह करते हैं, तो उसमें भी वही सिद्धांत है, एक ही बात है। अपने आत्मा का तो आविर्भाव होता ही है, क्या हो उसकी तो बात है। जिसको आत्मा जाना नहीं, आत्मभाव आविर्भाव करके, उसकी तो बात है ही नहीं। और जिसको आत्मरुचि है और आत्मभाव आविर्भूत होते, भले आत्मज्ञान नहीं हुआ हो, उनको भगवान की पूजा में जो भगवान की महिमा आई है, उस बहाने अपने आत्मभाव और विशेष रूप से आविर्भाव होते हैं, तो वो भी करते हैं पूजा। तो ज्ञानी पूजा करते हैं तो दूसरे अज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी अंतर में क्या करते हैं उनको पता नहीं है। जिसको पता नहीं है वो लोग बाह्य क्रिया की नकल कर लेते हैं कि देखो ज्ञानी ऐसे पूजा करते हैं तो हम भी करेंगे। ऐसे जैसे व्रतादि में तपश्चर्या में भी वही हुआ कि ज्ञानियों ने तो जो कर्म उदय में नहीं आते थे उसकी उदीर्णा करके उसको खपाए, तो अंतर में वो जो कार्य किया वो पता नहीं चला, बाहर में लोग नकल करने लगे, चलो अपने भी उपवास कर लो, अपने भी व्रत धारण करो, निर्जरा हो जाएगी। लेकिन अंदर में संसार की भावना पड़ी है, उसको निर्जरा होने वाली है ही नहीं। या जिसको आत्म कार्य करने की कार्य पद्धति का ही पता नहीं है, उसको तो निर्जरा होने वाली है ही नहीं। तो इस तरह से अज्ञानी संसारी लोग भी ज्ञानी की क्रिया की नकल कर लेते हैं, इससे कोई उसको फायदा नहीं होता। क्या कहा, पहले तो ना दे दिया, फिर लगा कि वितरागता की महिमा आए और उसका रस लगे तो संसार का रस कम हो जाए, हो सकता है, वो भी हो सकता है। एकांत नहीं होता ऐसा भी नहीं, एकांत होता है ऐसा भी नहीं। बाकी तो पूजा पाठ रूढ़िगत से करें तो उसका रस कम नहीं होता। इसलिए हमेशा पूजन करने वाले को सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं हम रूढ़ि में तो नहीं आ गए ना। और जो रोजाना नहीं पूजा पाठ करते, कभी कभी करते, उनको भी सावधान होकर करना है कि मैं तो कभी करता हूं, इसलिए मेरे को तो रूटीन अनुसार नहीं करना है, रूढ़ी अनुसार नहीं करना है, मेरे को तो अपने आत्मभाव आविर्भाव होवे उसी ढंग से करना है। जब भी करूं, जितने भी दिन करूं, उतने दिन मेरे तो मेरे इस ढंग से ही करना है, रूढ़िगत ढंग से हमको नहीं करना है। स्पष्ट लिखा है कि बाकी तो मैंने जो बहुभाग लोग करते हैं, पूजा पाठ रूढ़िगत से करते हैं, उन लोगों को तो संसार का रस कम नहीं होता है। अपने को वितरागता की महिमा आए, क्या खुद को वितरागता की महिमा आए, तो वितरागता की समझ हो तो महिमा आएगी ना। जो वितरागता क्या है उसकी समझ नहीं, उसको क्या महिमा आएगी? भोग संज्ञा में तो महिमा आएगी नहीं। स्वयं को वितरागता की महिमा आए तो रस कम होता है, बस सिद्धांत तो वही है कि बीत राग रस, राग रस को मारेगा, और राग रस बीत राग रस को मारेगा। उसी सिद्धांत अनुसार अपन चर्चा करते हैं हमेशा कि उदय में रस कम लो, क्या करो, जो भी उदय आए उसमें रस कम लेना। उदय में रस कम लेने से वितरागता का आविर्भाव करने का अवकाश प्राप्त होगा, और राग रस तीव्र लेने से तो वो अवकाश रहेगा ही नहीं, वितरागता कहां से प्रकट होगी। स्वयं को वितरागता की महिमा आए तो राग रस कम होता है। भगवान निष्क्रिय रूप से स्वयं में जम गए हैं, अपने में जम गए हैं। निष्क्रिय पने से मतलब राग की क्रिया वो सक्रिया, सक्रियपना है इधर। निष्क्रियता और सक्रियता अलग अलग अर्थ में, अलग अलग स्टेज में कही जाती है। जैसे कोई व्यापार धंधा, व्यवसाय, प्रैक्टिस, नौकरी, सारी जिंदगी कर लिया, फिर निवृत्ति ले ली, छोड़ दिया, तो क्या बोलेगा कि अब तो हम निष्क्रिय हैं, संसार के सब काम छोड़ दिए हैं, अब तो आत्म कार्य करना है इसलिए निष्क्रिय हो गए हैं उस प्रवृत्ति से। तो बाह्य प्रवृत्ति में सक्रियता और बाह्य प्रवृत्ति के अभाव में निष्क्रियता, ऐसा भी बोला जाता है। फिर बारी आती है राग की और वितरागता की, कि जो राग है वो सक्रियता है जीव का, और वितरागता है वो निष्क्रियता होगी। तो यहां वो बात है कि भगवान निष्क्रिय हो गए। अब तीसरी बात वो है कि परिणाम होना वो सक्रियता है, और परिणाम नहीं होता है ऐसा जो अपरिणामी आत्म स्वरूप है वो निष्क्रिय है। जैसे आचार्य भगवान ने समय सार की 320 गाथा की टीका में वो बात लिया है कि मैं तो निष्क्रिय हूं। क्या लिया है, मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूं, ध्रुव हूं, कुटस्थ हूं, निष्क्रिय हूं। तो निष्क्रिय मत माने क्या पूछा, वहां खुद ने प्रश्न उठाया टीका में, निष्क्रिय इति को अर्थ, क्या प्रश्न उठाया कि निष्क्रिय में आप क्या अर्थ कहना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या। तो कि संसार और संसार के कारण रूप परिणाम, वहां बंध शब्द लिया है, संसार शब्द नहीं लिया है, बंध और बंध के कारण रूप परिणाम। क्यों कि संसार और बंध एक ही है, और दोनों मोक्ष से प्रतिपक्ष है, मोक्ष बंध से प्रतिपक्ष है और मोक्ष संसार से भी प्रतिपक्ष है। तो वहां बंध शब्द का प्रयोग है, बंध और बंध के कारण रूप परिणाम, और मोक्ष और मोक्ष के कारण रूप परिणाम का अभाव है इसलिए मैं निष्क्रिय हूं, मेरे में उसका अभाव है इसलिए मैं निष्क्रिय हूं। वो तीसरा प्रकार सक्रिय निष्क्रियता का हुआ, ये परिणाम की क्रिया वो सक्रियपना है, और त्रिकाली ध्रुव परिणाम रहित तत्व है वो निष्क्रिय तत्व है। तो इसे तीन प्रकार से सक्रिय निष्क्रियता की बात शास्त्रों में चली है, जहां जो प्रकरण चलता हो उसी अनुसार अर्थ घटन करना। यहाँ वितरागता और सरागता की बात चली, इसलिए भगवान निष्क्रिय रूप से अपने में जम गए हैं। वो जम जाना वो भी परिणाम है, वो एक एक न्याय से सक्रियता है। लेकिन यहाँ राग मिट गया और वितरागता हो गई, इसलिए भगवान को भी निष्क्रिय कहने में आते हैं। ओहो प्रभु कैसे पूजा करते हैं, देखो बहन श्री खुद अपने ढंग से पूजा करती होगी, तो जो जो भाव अपने में आते होंगे वो भाव उन्होंने बता दिए हैं। बहन श्री को कैसे भाव आते हैं देखो, अब ऐसे देखो कि ओहो प्रभु आपे आपने ऐसा प्रकट किया ऐसा मुझे भी हो, आपने जैसा प्रकट किया परमानंद प्रकट किया केवल ज्ञान प्रकट किया, तो जैसे जैसे दिव्य भाव आपने आपने प्रकट किया और इस दिव्य भाव ऐसे इन दिव्य भाव प्रकट करने से आपको हम देव कहते हैं, देव क्यों कहते हैं, दिव्यता प्रकट होने से तो देव कहते हैं, हम दूसरे को देव नहीं कहते हैं, संसारी कहते हैं, हमारे तो देव और संसारी दो ही दो विभाग है। ये रागी देवलोक के देव को हम देव नहीं कहते, उनको तो संसारी कहते हैं और आपको देव कहते हैं। तो आपने जैसा प्रकट किया वैसा मुझे भी हो, ऐसी भावना पूर्वक पूजा करने से रस संसार का रस कम होता है, ऐसी भावना प्रकट करने से संसार का रस प्रकट होता है कम होता है, संसार का रस कम होता है और आत्मरस प्रकट होता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्या आया इस संसार में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा किया कि वो चाहिए चाहिए उसमें आकुलता है और उस चाहिए चाहिए अनंत काल करके मैं बहुत दुखी हुआ और पुण्य योग से सब कुछ मिला भी और पाप योग से सब कुछ जो मिला था वो चला गया भी। अब इस प्रकार से मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें गर्भित क्या है कि मुझे कुछ चाहिए उसमें जो दुख होता है दो दुख भी मुझे नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए उसमें राग होता है वो राग भी मुझे नहीं चाहिए। ये कुछ भी नहीं चाहिए में दोनों बात आ जाती है, राग और राग का फल दुख दोनों हमको नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए उसमें बहुत समझदारी है, समझदारी वो जीव दुखी होना नहीं चाहता, क्या वो जीव दुखी होना नहीं चाहता। उतना लोकोत्तर विवेक उसको प्रकट हुआ है, दुखी विवेक में तो मुझे ये अच्छी से अच्छी चीज चाहिए ये बात आएगी, यहां आएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी समीप में आपके चरण में बैठा रहूं, आपके चरण में बैठा रहूं और आपकी वितरागता को देखता रहूं। मेरे में भी वितरागता का आविर्भाव होगा जब मुझे आपकी वितरागता देखने का बहुत पसंद है, मुझे रस आता है तो मेरे में भी वितरकता आने का अवकाश हो जाएगा। तो बेंसर को क्या भाव आया है पूजा करते करते, देखो वही बात है, भगवान ना प्रतिमा पण એવા જાય વાસે ને કે બુરીવલી માં બાજુમાં જે મંદિર છે ને આપણો ને બાજુમાં શાંતિનાથ ભગવાન નું મંદિર છે, શાંતિ સાગર ની મૂર્તિ મૂકે, બહુ ભાવ વાળી પ્રતિમા છે, ઉપર અને નીચે બી જગ્યા જેને પ્રતિમા લીધા છે ને ત્રણે પ્રતિમા સારા છે, ઉપર ત્રણે પ્રતિમા સારા છે, સાઈઝ બી મોટી છે, નીચે તો સાઈઝ બી પણ પ્રતિમા છે એ છે, ખડગાસનમાં જે છે ભરત બાહુબલીના એ પણ બહુ સારા, બધા પ્રતિમા એ લોકો બહુ સારા લેવા છે ગમે તેમાં, પહેલાં તો આપણા મુમુક્ષુ એમાં જોડાયેલા હતા અને તેરાપંથી લોકોને દ્રષ્ટિએ જે મંદિર ચાલતું હતું, પછી સંખ્યા વધી ત્યાં બોરીવલીમાં, વસ્તી તો વધતી ગઈ સંખ્યા વધી, વિષપંથીઓની સંખ્યા વધી, પછી ઝઘડા ચાલ્યા, ઝઘડામાં જાજી સંખ્યાવાળા હોય સ્વાભાવિક છે એ બાજુ બધું થાય, એટલે એ બધું થવા માંડ્યું, પછી લોકો અત્યારે જે ફૂલ મૂકે છે એ મોટો ઝઘડો થયેલો એમાં, અને ફૂલ મૂકવાનું પછી શરૂ થયું, પછી તો એ લોકોના ટ્રસ્ટી હોય એ લોકોનું બધું થાય, ચૂંટણી થાય ત્યારે તો બધું લોકશાહી રીતે ચાલે, એટલે જેની સંખ્યા વધારે હોય એ પ્રમાણે બધી પછી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, પણ પ્રતિમા ભગવાનના બહુ સારા છે, એટલા ભાવવાય વિતરાક ભાવવાય પ્રતિમા છે, આ લોકો હમણાં ત્યાં જઈને બેસે છે, સવારે સ્વાધ્યાય પૂરો થાય એટલે મંદિર જઈને બેસી જાય છે, અને જમવા ટાણે આવે ને પછી સાંજે જમીને પહોંચી જાય છે, નજીક છે, 5 મિનિટનો રસ્તો નથી, બહુ સરસ પ્રતિમા છે, તો ભાવ એવો આવે કે બસ આપકે ચરણ મેં બેઠા રહું ઓર આપકી પૂજા કરું, આપકા ગુણગાન કરું, આપકી મહિમા કરું, वो एक न्याय से आत्मा की ही महिमा है, क्या है वो एक न्याय से आत्मा की महिमा है, ऐसी भावना के साथ मुझे आत्मा ही चाहिए, ऐसी रुचि हो तो संसार का रस कम होवे, तो आत्मरस और आत्मरुचि સંસાર કા રસ કો કમ કર દેગી, પૂજા પાઠ સે રસ ઓછા ન હોય, પૂજા પાઠ એસે રૂઢિગત કરને સે, રૂઢિગત માં અધ્યાર લેના પહેલે લિખ દિયા હૈ કે ખાલી પૂજા પાઠ સે રસ કમ નહીં હોતા હૈ, અપની ભાવના વિતરાગતા કી હો તો રસ કમ હોતા હૈ, વો બાત હૈ, પૂજા પાઠ થી રસ ઓછો ન થાય એમ જે કહી દીધું એ એક સામાન્ય પરિસ્થિતિની વાત કરી દીધી, પણ ચોખવટ કરી કે પોતાની ભાવના હોય તો વિતરાગતાની ભાવના હોય તો રસ ઓછો થાય, અશુભ પરિણામથી બચવા માટે પૂજા પાઠ આવે છે, સામાન્ય રીતે પૂજા પાઠ કરે તો એટલું અશુભથી તો ખસે છે, શુભમાં આવે છે, ઇન્દ્રો પણ ભગવાનની એવી પૂજા અને મહિમા કરે કે જોનારને આશ્ચર્ય લાગે, નાની છે ને સૌધર્મ ઇન્દ્ર એક ભવતારી એ પણ ભગવાનની પૂજા કરવા આવે છે, લોકોને આશ્ચર્ય લાગે, ઓ આવા મોટા ઇન્દ્ર થઈને બાલ તીર્થંકરની પૂજા કરે છે, લઈ જાય છે ને ત્યાં ઘૂઘરા બાંધીને નાચે, જન્મે ત્યારે તો શું હજી તો જન્મ થયો છે ને એની સામે નાચે છે, પછી લઈ જાય મેરુ પર્વત ઉપર, ભગવાનની માતા ભાઈ બીજું બાળક આર્ટિફિશિયલ મૂકી દે, કેમ કે એને પોસાતું નથી. કે મારે ત્યાં જન્મ થયો ને અત્યારે મારાથી યોગ આગળ લઈ જાય, એને રાગ આવ્યો તો એને હજાર નેત્ર થી જોવા માંડ્યા. ઇન્દ્ર હજાર હા પોતું એમ તો વિક્રય શરીર છે ને, બે નેત્ર ની જગ્યાએ હજાર નેત્ર કરી નાખે અને હજાર હજાર નેત્ર થી એમને જોવે. હા એવું હોય છે, શાસ્ત્રમાં આવે છે. હા અને પછી એને લઈ જાય મેરુ પર્વત ઉપર પૂજા કરે, અષ્ટદ્રવ્ય થી પૂજા કરે. લેશન સંયમ પરસુરનાથ જજે હે, ત્યાં તો કઈ આવી રીતે ચોથો ગુણ સ્થાન છે, બાહ્ય સંયમ કઈ પ્રગટ થયો નથી, પણ ભગવાન ઇન્દ્ર એની પૂજા કરે છે. આશ્ચર્ય લાગે જોનારાને, એવી ભક્તિ ભાવથી પૂજા કરે, નાચે, પૂજા કરતા કરતા પણ નાચે, છતાં ભાવ ઉપર આધાર છે, ક્રિયા ઉપર આધાર નથી. બીજા નાચે એની માય, આ પૂજા કરે બીજા કરે એ નાચે બીજા નાચે. ભાવ ઉપર આધાર છે, ક્રિયા ઉપર આધાર નથી. પોતાની ભાવનાથી એટલે સ્વરૂપની ભાવનાથી કરે તો સંસારનો રસ ઓછો થાય, બસ એ તો સિદ્ધાંતિક વાત છે. જેની પ્રતિમા જીન સારખી એ પદ છે બનારસદાસજીનો, નાટક સમય સારમાં એમણે એ વાત કરી છે. જો નાટક સમય સાર તો અધ્યાત્મ ગ્રંથ છે, કેવો ગ્રંથ છે, અધ્યાત્મ ગ્રંથ છે, તો પણ એમાં ભગવાનની પ્રતિમાની વાત આવી છે. જીન પ્રતિમા જીન સારખી, એ તો જેવા જીનેન્દ્ર છે એવો જીન પ્રતિમા છે, કેમ કે જયારે વાણી ન ખરે ત્યારે ભગવાનની પ્રતિમા સજીવન મૂર્તિમાં કઈ ફેર દેખાય નહીં, કેમ કે પ્રતિમા એકદમ સ્થિર છે અને ભગવાન પણ પ્રતિમા વત જામી ગયા છે, એ એકદમ સ્થિર છે, કઈ ખબર પડે નહી. અમે લંડનમાં વેક્સ મ્યુઝિયમ જોવા ગયા હતા, વેક્સ એટલે મીણ મોમ, એ લોકો કલર બધા કલરના તો મીણ તો હોય ને, એટલે સ્કિન કલર, કપડાના કલર, વાળના કલર એટલા એક્ઝેક્ટ બતાવે કે એ પ્રતિમા છે કે સાચું છે ખબર ન પડે તમને, ફિલિંગ વાળા બધા પ્રતિમા બનાવે. જેમ કે ક્રિકેટર હોય તો એને બોલ ફેંકતો બતાવે તો એને બધા હાવ ભાવ બધું પ્રમાણે લાગે. એક જગ્યાએ એવું થયું, બધા એમાં શું છે કે યુરોપિયન સ્ટેચ્યુ હોય, યુરોપિયન લેડીઝ નું સ્ટેચ્યુ હોય, તો એક જગ્યાએ કોઈ યુરોપિયન લેડીઝ ઉભી રહી ગઈ. હા તો કોઈને એમ કે સ્ટેચ્યુ છે હાથ લગાડવાની, બિલકુલ એક્ઝેક્ટ લાગે તમને, આંખનું પાપણ ન મટમટાવે તો ખબર ન પડે કે આ સ્ટેચ્યુ છે કે હાચી છે. ભગવાનને તો પલકારો ગયો, મેશોન મેશ ચલા જાય, ચાલી જાય છે એમને. ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં મેશોન મેશ ઘટી જાય છે, નીચે પણ, નીચે પણ જેને સ્વસંવેદનાત્મક સ્વરૂપ ધ્યાન ની કાર્ય પદ્ધતિ હોય છે ધ્યાનમાં, એને આંખના પલકારા ટીમકારા ઓછા થઈ જાય, કમ થઈ જાય. અને ભગવાનને તો પછી આંખનો પલકારો રહેતો નથી, આંખો મટમટાવે નહી, જે પ્રતિમા આમ છે એમ જ રહી જાય, ના સાગર દ્રષ્ટિ સ્થિર, ઉખાડવાસ ઉખાડવાસ્પદ નહીં થાય. અને જીન પ્રતિમા જીન સારખી એમ કીધું છે બનારસદાસ છે. જીનેન્દ્ર ભગવાનની પ્રતિમા જોઈને એવો ભાવ આવે કે હે ભગવાન હું આપને સાક્ષાત જીનેન્દ્ર દેવ જ દેખું છું, હવે હું પ્રતિમા નથી જોતો, સજીવન મૂર્તિને દેખું છું. એમ લે કેવી રીતે ભાવમાં લે સજીવન મૂર્તિને, અહીં તો ભગવાન બિરાજે જ છે. પ્રતિમા રાખી છે એમને, અહીં તો ભગવાન બિરાજે છે. સમોસરણમાં ભગવાન છે તેવા જ આપને દેખું છું. આ મંદિર સમોસરણ જ છે અને એવા જ આપને હું દેખું છું અને એવો જ મારો આત્મા છે. સાથે સાથે પોતાના સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરતા જાય છે જ્ઞાની, એટલે એને પોતાનો આત્મભાવ આવિર્ભાવ થાય છે. આમ ભગવાન સ્વરૂપમાં લીન છે તો એક્ઝેક્ટ એવું પોતાનું સ્વરૂપ જોવે છે કે સ્વરૂપ તો સ્વરૂપમાં જ છે, સ્વરૂપ સ્વરૂપમાં છે એમ જોવે. એ જોનાર ને અંતરલીનતા આવે છે, સ્વરૂપ અંતર તત્વ સ્વરૂપ છે. એ વખતે પણ એમને સ્વરૂપ સન્મુખતાનો પુરુષાર્થ અને પોતાના સ્વસંવેદનનો આવિર્ભાવ અથવા વિશેષ સ્મરણ થાય છે. એમ જુદા જ પ્રકારની ભાવના આવે એટલે આત્મભાવના આવે, આત્મરસ ઉત્પન્ન થાય, આત્મરુચિ ઉત્પન્ન થાય તો સંસારનો રસ ઓછો થાય. એ પ્રકારે અનેકાંત છે, થાય પણ અને ન પણ થાય, જેવી જેનો ભાવ. જેને થાય છે એને વ્યવહાર કહેવાય છે, જેને થાય છે એને સંસારનો રસ ઓછો થાય એને પૂજાનો ભાવ. વ્યવહાર એવું સ્થાન અને વ્યવહાર એવું નામ પામે છે. સંસારનો રસ ઓછો ન થાય એને વ્યવહાર એ નથી, એને તો એ વ્યવહાર પણ નથી એમ છે. ભાવના તો મુખ્ય વાત છે, ભાવના જગાડવાની વાત છે, ભાવના વધારવાની વાત છે. પૂજા કરીને પણ અહીં સુધી રાખ. જીનોક્ત વ્યવહાર પૂજા પાઠ વ્રત તપાદી યથાર્થ સમજણ વગર જે જીવો રૂઢિગતપણે કરે છે તેને આત્મલાભ થતો નથી. અર્થાત સંસાર રસ ઘટતો નથી. પરંતુ જે જીવ આત્મરુચિ પૂર્વક આત્મભાવનાથી પૂજા પાઠ આદિ કરે છે તે परिपूर्ण आत्मस्वरूप जेने प्रगट कर्यु छे एवा जिनेन्द्र देव एवा जिनेन्द्र देव ने पूछता पुताना स्वरूपनु अनुसंधान करीने आत्मभाव प्रगट करे छे। तेने संसार रस ओछो थाय छे। तेथी सिद्धांत फलित थाय छे के वीतराग रस राग रस ने मारे छे, अने संसार नो राग रस